हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 1। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदं तत्रादरः न परः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे बिभस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवेति। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। ग्रन्था श्रीमद्भागवतं महापुराण की जय हो। आठवां स्कंद तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। ये अत्यंत ही महान स्तुति है जो गजेंद्र, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गजेंद्र ग्राह के जाल में फंस गया है। उसके मित्रों ने उसके पुत्रों ने उसके संबंधियों ने भरपूर कोशिश की, उसने भी अपनी पूरी शक्ति लगाई, परंतु वो उस घिड़ियाल के चुंगल से नहीं फंस गया, पर नहीं बच सक रहा है। तो उस समय उसने ये विचार किया कि वास्तव में ये तो विधाता का पाश है, ये घड़ियाल का पाश नहीं है, ये विधाता का पाश है। और अब मुझे, उसने बहुत ही सोच समझ कर एक निर्णय लिया कि अब मुझे उसी भगवान की शरण में जाना चाहिए जो बड़े बड़े देवताओं को भी आश्रय देने वाले हैं। ऐसी बुद्धि जैसे ही उसको आई तो उसने प्रार्थना शुरू कर दी। अत्यंत ही सुंदर प्रार्थना है, ये इतना सुंदर स्तोत्र है। श्रुति फल में बताया जाता है कि इस स्तोत्र का जप करने से जन्म मरण के चक्कर से बचा जा सकता है। और एक और भी श्रुति फल बताया जाता है कि व्यक्ति ऋण से बच सकता है। ऋण माना कर्ज होता है ना यदि किसी का, और ये केवल बोलने की बात नहीं है, बहुत बहुत इसके ऊपर प्रशिक्षण भी किया गया है। बहुत ही सुंदर स्तुति। और मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भागवतम में ये दो स्तुतियां, एक गोपी गीत और दूसरा गजेंद्र स्तुति, बहुत बहुत सुंदर लिरिक्स में है, इतने सुंदर छंदों में बताया गया है कि गाते गाते ऐसा लगता है समाधि लग जाती है। अत्यंत ही सुंदर ये प्रार्थना है। और स्पेशली क्योंकि अभी दामोदर मास स्टार्ट हो रहा है, तो आचार्य जनों का यह मत है कि हमें इस मंथ में डेली यह गजेंद्र स्तुति अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो हम जो भी कार्य करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भक्त सदैव वो कार्य के विषय में सर्च करते हैं कि वो कौन सी बात है जो भगवान के सामने मैं जाके बोलूं भगवान को बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम गजेंद्र स्तुति आज स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न तो उठता ही है कि जब घड़ियाल ने इसको गजेंद्र को पकड़ा, उस समय उसको इतनी पीड़ा हो रही थी, तो वो छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, अचानक से उसे बुद्धि कैसे आई? और अगर बुद्धि आ भी गई तो उसने प्रार्थना करना कैसे शुरू कर दी? उसको वहां पर प्रार्थना करना सिखाया किसने? प्रार्थना सीखी कैसे, पढ़ाया कैसे? इतनी बड़ी स्तुति जो वो कर रहा है, जो अभी हम आज से सीखना शुरू कर रहे हैं, तो ये गजेंद्र जो कि पशु शरीर में है, भला उसको ये किसने सिखा दी? तो इसका उत्तर भी हमें इस पहले श्लोक में मिलेगा। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। श्री बादरायणी रुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरिधि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितम् एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोरिधि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितम् एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरिधि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितम्। शब्दार्थ श्री बादरायणी उवाच। बादरायणी कहते हैं शुकदेव गोस्वामी को, क्योंकि वो वेदव्यास जी के पुत्र थे। तो अब शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं एवं व्यवसितो बुद्ध्या। एवं मतलब इस प्रकार, व्यवसितो मतलब स्थिर बुद्धि से, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि वो बहुत ही दीर्घ काल तक अपनी बुद्धि से कुछ सोच रहा था। तो इस तरह से सोचने के बाद समाधाय मनो रिधि, समाधाय मतलब उसने केंद्रित कर दिया, अब वो स्थिर मन को स्थिर कर दिया। और अपने मन को हृदय में स्थित करने के बाद क्या करने लगा? जजाप। जजाप मतलब जप करने लगा। परमम जाप्यम, जाप्यम का मतलब होता है जपने योग्य, मतलब उस मंत्र को जिसे अपने महान भक्तों से उसने सीखा था। वास्तव में महान भक्त हमें वो सिखाते हैं जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसने सीखा था, तो बोला कब सीखा था, वे कहते हैं प्राग जन्मन यनु शिक्षति। प्राग जन्मन मतलब पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में उसने सीखा था। अनुशिक्षति अभ्यास किया था, बार बार डेली डेली पढ़ने से। कैसे अनुशिक्षति का मतलब डेली डेली एक प्रार्थना को पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते रट्टा लगा के पूरा पक्का कर देते ना, इसको बोलते हैं अनुशिक्षति। वरना तो शिक्षा होती है जो हम लोग सीख लेते हैं, लेक्चर सुन लिया, उसको कुछ याद किया, कुछ अपने हिसाब से बता दिया। लेकिन अनुशिक्षितम का मतलब होता है बहुत अभ्यास उसको किया था। तो ये बता रहे हैं कि ये जो स्तुति आज गजेंद्र भगवान के सामने गाने वाले हैं वो उन्होंने प्राग जन्मन्यु शिक्षति पूर्व जन्म में सीखा था। तो इससे सिद्ध हुआ कि जितना भी भजन हम कोई भी जन्म में करते हैं वो, और जो अभी हम भजन कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट जन्म में वो क्षीण नहीं होता है, वो ऐसे का ऐसा बना रहता है। भले ही हमें पशु योनि भी क्यों ना मिले, यदि किसी को पशु योनि भी मिलती है फिर भी भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। भगवान बताते हैं 2.14 में, नेहा विक्रमाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी विभक्ति यदि आप करते हो तो वो कभी भी नष्ट नहीं होती और जीवन भर, बल्कि हर जन्म में वो आपका साथ देती है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है, भक्ति कभी क्षीण नहीं होती है, भक्ति कभी कम नहीं होती है। जितना किया है वो उतना सारा जप, उतना सारा जो भी आपने स्तुति पढ़ी है, जो कुछ सीखा है, वो सब आपका बैंक बैलेंस है। वो हर जन्म में आपकी सहायता करेगा। भक्ति अव्यय है, भगवान कहते हैं अव्ययम सुसुखम। ये भक्ति एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता है और वो आपको परम आनंद प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पर गजेंद्र की इस स्तुति से हमें पता चलता है कि हम किसी भी जन्म में कोई भी भक्ति करते हैं, किसी तरह का कोई भी भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं, तो वो सदैव जन्म जन्मांतर तक रहता है। और भगवान से अर्जुन ने पूछा भी था कि भगवान यदि कभी ऐसा हो जाए कि हम सिद्धि को प्राप्त ना करें और हमारी मृत्यु हो जाए तो हमने जो भक्ति की है वो, तब भगवान कहते हैं कि जो पुण्य करता है ना वो कभी भी, जो वास्तव में जो भक्ति करता है उसकी भक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती है और अवश्य उसे वापस चांस दिया जाता है अपनी भक्ति को ऊपर उठाने के लिए। पतित नहीं हो जाता कभी भी भक्त। सुखदेव गोस्वामी अनुवाद देखिए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे स्मरण का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 6.43 और 44 में इस प्रकार से हुआ है, तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पावदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः। इन श्लोकों में यह शाश्वत किया गया है कि यदि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति नीचे गिर जाता है तो वह पतित नहीं होता है। तत्र तम बुद्धि संयोग लभता पूर्व देही का, वो अपने पूर्व देही में जो भी उसने भक्ति की होती है वो वापस से उसको प्राप्त होती है। यदते च ततो भूय संसिद्धु को, फिर उस भक्ति को प्राप्त करके वो आगे बढ़ने की, मतलब अगर किसी ने 25% भक्ति की है तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट जन्म में उसको 1% से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको 26% से स्टार्ट करने का अवसर मिलेगा। क्यों? पूर्वाभ्यास न तेनाव रियते यवशोपि सा। अगर वो कोशिश नहीं भी करता है तो भी पूर्व अभ्यास के जो चेतना है वो उसको विवश कर देती है कि नहीं, तुम्हें भक्ति करनी है, तुम्हें अपनी भक्ति में उन्नति करनी है, जहां तुमने छोड़ा है उससे आगे बढ़ना। तो शीला प्रभुपाद जी कहते हैं इन श्लोकों में यह शाश्वत किया गया है कि यदि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति नीचे गिर जाता है तो वह पतित नहीं होता है, अपितु उसे ऐसे पद में रखा जाता है जिससे वह काल क्रम में भगवान को स्मरण करेगा, जैसा कि बाद में बताया जाएगा। अभी बाद में बताया जाएगा मतलब पूरी स्टोरी बताई जाएगी ना, राजा इंद्रद्युम्न कैसे हाथी बना। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं फिर भी कि गजेंद्र पहले इंद्रद्युम्न नामक राजा था, किंतु किन्हीं कारणों से वह अगले जन्म में गजेंद्र बन गया। अब उनको अगस्त मुनि ने श्राप दिया था, वो कारण भी बाद में पढ़ते हैं, लेकिन अभी तो हम इस स्तुति का आनंद लूटे हैं कि अगले जन्म में वो गजेंद्र बना। अब गजेंद्र संकट में था और यद्यपि उसका शरीर मनुष्य से भिन्न था, किंतु उसे वह स्तोत्र स्मरण था जिसे वह पूर्व जन्म में जपा करता था। भगवान ने भगवत गीता में बताया, यतति च ततो भूय संसिद्ध कुरु नंदन, मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए कृष्ण उसे फिर से अपना स्मरण कराने का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान छोड़ते नहीं हैं। भगवान आपने भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति की है तो भगवान सदैव आपका हाथ पकड़े रखते हैं, बस आप क्या करते हो, छुड़ाने का प्रयास भी करते हो, फिर भी भगवान आपको बार बार अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ यह सिद्ध हो जाता है क्योंकि यद्यपि गजेंद्र संकट में पड़ गया था, अपने किसी भी कार्य के कारण भले उसको पशु शरीर मिल गया था, वो संकट में पड़ गया था, किंतु यह उसके लिए सुअवसर था कि वह अपने पूर्व भक्ति कार्यों को स्मरण करे जिससे वह तुरंत भगवान द्वारा उबारा जा सकता। अभी ये संकट गजेंद्र के ऊपर आया और वो भगवान की भक्ति करने का उसे सुअवसर प्रदान हुआ। अब भगवान उसे उबारेंगे, भगवान अवश्य रिस्पॉन्स देंगे, वो भगवान गजेंद्र की स्तुति सुनकर अवश्य आएंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इससे यह अनिवार्य हो जाता है कि कृष्ण भावनामृत के सारे भक्त किसी मंत्र का जप करने का अभ्यास करें। आपको श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अवश्य मंत्र जप करना चाहिए, स्तोत्र सीखने चाहिए, हमें अवश्य वो सब जो भगवान को प्रसन्न करने के मंत्रास हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। निश्चय ही मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए क्योंकि यह महामंत्र है, और महामंत्र को जप करना किसी हालत में भी नहीं छोड़ना चाहिए, रट लेना चाहिए कि यदि कभी ठोकर लगे ना तो भी मुंह से निकले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वह चिंतामणि प्रकर सत्न सुकल्प वृक्ष, ये ब्रह्म संहिता, और आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं नरसिंह स्तोत्र, इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह। ये सब स्तोत्र हैं जो भगवान को प्रसन्न करने के, जिस तरह हम लोग अभी गजेंद्र स्तुति पढ़ रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इन सब के जप का अभ्यास करना चाहिए, प्रत्येक भक्त को किसी न किसी मंत्र के पूर्ण रूपे न जप का अभ्यास करना चाहिए जिससे भले ही वह इस जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना ना प्राप्त कर सके, किंतु अगले जीवन में वह पशु होने पर भी कृष्ण भावनामृत को नहीं भूल सकेगा। कितना सुंदर लाभ है कि इस जीवन में यदि आपको इससे भले ही पूरा लाभ प्राप्त ना हो, इस भौतिक जगत की कोई भी भौतिक वस्तु यदि हम प्राप्त करते हैं तो इस जन्म में यदि हमें उसका कोई लाभ नहीं मिलता है, पूर्ण लाभ यदि प्राप्त नहीं होता है, तो क्या होता है, अगले जन्म में वापिस से ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करना पड़ता है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अगले जन्म में यदि पशु भी हो जाओगे तो भी कृष्ण भावनामृत को नहीं भूलोगे। निस्संदेह भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वह इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत को पूर्ण कर ले, क्योंकि कृष्ण तथा उनके उपदेशों को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य शरीर छोड़ने पर भगवत धाम को वापिस जा सकता है। वास्तव में भक्तों, ये भक्ति बड़ी अद्भुत विचित्र वस्तु है। हम चाहे किसी भी योनि में चले जाते हैं, हमने जो भगवान की भक्ति की होती है, भगवान का पवित्र नाम का जप किया होता है, भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण किया होता है, वो हर जन्म में हमारी सहायता करते हैं। वास्तव में हमें संसार में हर बहुत सारे कार्य करते हैं, परंतु सबसे ज्यादा प्रिशियस, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य जो हम करते हैं ना, वो हम अभी करें, अर्थात भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान के विषय में श्रवण करना और भगवान के पवित्र नाम का जप करना, ये एक ऐसा कार्य है, ऐसा धन है जो किसी भी योनि में भी खत्म नहीं होता है। बस होता कैसे है, जैसे आपने एक तिजोरी में बहुत सारा धन जमा करके रख दिया हो और उसको रख के आप भूल गए हो, आप भूल गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका धन आपसे ले लिया गया है या अब आपके पास धन नहीं रहा, आप भूल गए हो। जैसे ही किसी गुरु महाराज का या शुद्ध भक्त का सानिध्य आपको प्राप्त होता है, फौरन से वो वाला सारा का सारा धन, क्योंकि आपको याद आ जाता है, तो आप उसको प्राप्त कर सकते हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भले ही वह इस जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना प्राप्त ना कर सके, किंतु अगले जीवन में वह पशु होने पर भी कृष्ण भावनामृत को ना भूल सकेगा। वो आप कभी भूल नहीं सकते, चाहे आप किसी भी योनि में, कोई ना कोई भगवान ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा कर ही देंगे। भगवान ने इसीलिए भगवद गीता में कहा है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव प्रियते हवशोपि सह, कि पिछले जन्म में उसने क्यों कि ऐसा कार्य किया है, भक्ति कृष्ण भावनामृत में लेकर कार्य किया, फिर भली वो इस जन्म में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करता है, कृष्ण खुद ही उस तक वो भक्ति का के प्रभाव के अनुसार सर्कमस्टेंसेस प्राप्त करा ही देते हैं उसे, ताकि वो पुनः अपनी भक्ति को स्थापित कर सके। इसीलिए गजेंद्र को आज यह स्थिति में डाला गया था कि भगवान चाहते हैं कि वो मुझे पुनः याद करे। आगे श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही खास बात बता रहे हैं कि निसंदेह भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वह इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत को पूर्ण कर ले। अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है अभी मैं थोड़ी सी भक्ति करूंगा, एक आध माला करता हूं तो ठीक है, फिर भी मुझे अगले जन्म में भी याद तो रहेगा ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपनी ओर से भरपूर कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अब देखो, इस मनुष्य जीवन में रहकर भी भक्तों का संग है, शास्त्र है, श्री प्रभुपाद जैसे गुरु महाराज का सानिध्य है, उसके बाद भी घर पे आके भागवत कथा हमें प्राप्त हो रही है, उसके बाद भी यदि हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो फिर अगले जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है न जाने कितने जन्म लग जाए, है ना, जरूरी थोड़े हो सकता है इस जन्म में पूरी तरह से भक्ति ना करने के कारण और आहार निद्रा भय मैथुन में अपने जीवन को व्यतीत करने के कारण पशु जीवन मिले, तो जरूरी थोड़े है कि उस पशु जीवन में हम लोगों को इतनी अच्छी तरीके से गजेंद्र की तरह वो स्तुतियां याद आ जाएंगी। क्योंकि गजेंद्र का जो अभ्यास था वो बहुत ज्यादा तीव्र था, और उसे जो श्राप भी मिला था ना, अगस्त मुनि ने जो गजेंद्र बनने का श्राप भी दिया था ना, वो श्राप भी उसको एक बहुत ही उच्च कारण के कारण मिला था। क्योंकि अगस्त मुनि ने, अब देखो, ये महाराजा इंद्रद्युम्न जो थे वो भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, अगस्त मुनि उनके पास आए, परंतु अगस्त मुनि का उन्होंने कोई स्वागत नहीं किया। स्वागत जब अगस्त मुनि का नहीं किया, तो अगस्त मुनि ने सोचा कि ये महाराजा इंद्रद्युम्न ने क्या सोचा कि मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूं, अभी मैं वो बहुत बड़ा राजा था, भगवान की भक्ति कर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अभी बार बार कोई साधु आएगा, कोई ब्राह्मण आएगा, तो बार बार मुझे भक्ति से उठना पड़ेगा ना, इससे बेहतर है मैं छोड़ देता हूँ, भले कोई भी आए, मैं उसको, है ना, उसकी सेवा नहीं करता हूँ, मैं बस भगवान की सेवा कर रहा हूँ। देखा जाए तो अच्छा भाव है कि वो भगवान की भक्ति करना चाह रहा था, वो भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा था, तो कोई भी साधु आए बार बार वो डिस्टर्ब हो रहा था ना, तो इसलिए उसने नहीं किया। लेकिन महाराजा अगस्त ऋषि ने सोचा कि यदि ये इस प्रकार अहंकार से रहकर मतलब भक्ति करेगा,
तो इसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ये बहुत शुद्ध भक्त है, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। तो फिर उसको भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम अभी राजा बन के तपस्या करता रहेगा तो भगवान इसको कभी दर्शन नहीं देंगे। लेकिन अगस्त मुनि तो इसकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे। इसकी भले उस ये ऐसा नहीं है कि अगस्त ऋषि ने उन्हें नाराज होकर या दुखी होकर या अपनी सेवा ना करने के कारण क्रोधित होकर श्राप दिया था, बल्कि वो तो महाराजा इंद्रद्युम्न की भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए थे और उन्हें ये श्राप दिया था कि तुम गजेंद्र बन जाओ और भगवान हरि के दर्शन करके डायरेक्ट से भगवान के लोक को प्राप्त करो। राजा बनकर वो तपस्या करता रहा, भक्ति करता रहा, तो न जाने कितने जन्मों तक उसे भगवान के दर्शन नहीं होते। तो ऐसी स्थिति उनके जीवन में आई थी। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें हमेशा सतर्क रहकर भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति तो सदैव हमारे साथ ही रहेगी, तो थोड़ी थोड़ी करके करें। अब जो हमें इतना अच्छा सुअवसर प्राप्त हुआ है उसका हमें पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इसी जीवन में हमें पूर्ण सिद्धि, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति तक पहुंच जाए हम। लेकिन श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत को पूर्ण कर ले, क्योंकि कृष्ण तथा उनके उपदेशों को समझ लेने के मात्र से ही मनुष्य शरीर छोड़ने पर भगवत धाम को वापस जा सकता है। भगवान को समझना है और भगवान के उपदेशों को, श्रीमद् भगवत गीता को समझना है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरे जन्म को मेरे कर्म को जो समझ लेता है काले, तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, फिर वो इस संसार से अपना देह त्यागने के बाद वापस जन्म नहीं लेता और मुझ तक पहुंचता है। तो यदि किसी का पतन भी हो तो भी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। फिर भी अगर भौतिक संसर्ग के कारण, भौतिक गुणों के कारण किसी का भौतिक स्थिति से पतन हो जाए और दूसरा जन्म उसे पशु का भी मिल जाए तो भी जो उसने भक्ति की है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। श्रील प्रभुपाद जी कहते उदाहरणार्थ अजामिल ने बचपन में अपने पिता के निर्देश से नारायण जप का अभ्यास किया था, किंतु बाद में अपनी युवा अवस्था में उसका पतन हो गया। वह शराबी, स्त्रीगामी, चोर तथा उच्चक्का बन गया था। यद्यपि उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के लिए नारायण के नाम का उच्चारण किया था, फिर भी पाप कर्मों में लिप्त होकर भी वह उन्नति कर गया। अतएव हमें किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना नहीं भूलना चाहिए। इससे हमें बड़े से बड़े संकट में सहायता मिलेगी, जैसा कि हम गजेंद्र के जीवन में पाते। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर समझाए कि भले ही कितनी ही विकट हमारी स्थिति बन जाए, भले हम लोग भौतिक स्थिति से गिर भी जाए, रजोगुण के कारण, काम वासना के कारण यदि हमारे करतूत भी गंदे हो जाए, लेकिन फिर भी भगवान के पवित्र नाम का जप करना नहीं छोड़ना चाहिए। ये भगवान का पवित्र नाम अवश्य हमारी सहायता करेगा और चाहे हम कितने ही निम्न कोटि के स्तर पर पहुंच जाएंगे, अवश्य भगवान का पवित्र नाम जो है वो हमें उन्नति कराएगा। जिस प्रकार से गजेंद्र भले ही पशु शरीर में है, लेकिन भगवान की जो स्तुति उसने की थी वो आज उसे याद करा रही है, और इसी स्तुति के कारण भगवान अवश्य आएंगे, भगवान अवश्य दर्शन देंगे। हम सबको भी यदि हम प्रेम से इस स्तुति का पाठ करेंगे तो आज से हम इस स्तुति को कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।